محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ذاتیہ میں سے جو اللہ کی شان ہے جن کا اظہار ہوتا رہتا ہے دنیا کے اندر, انہی شان کے ساتھ یہ دنیا قائم ہے اور چل رہی ہے. مختلف تجلیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی وہ شان ذاتیہ میں سے ایک تجلی کہ بندے کو, یہ بندی کو اللہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے, محرومیت نہ محسوس کرے. اللہ کسی کو محروم چھوڑتا نہیں. اس شان کا مظہر مکمل جس میں اللہ نے کیا ہے شان کو, اس شان ہی کا نام رمضان ہے. اس شان کا پورا اس تجلی کا اظہار جو اللہ پاک نے فرمایا رمضان کی شکل میں فرمایا کہ بندہ مجھ سے محروم نہیں ہوگا, میرا ماننے والا مجھ سے کبھی محروم نہیں ہوگا. اور دیکھیں اللہ نے اس میں رمضان میں اس کو کس قدر کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. جیسے فی روایت ہے کہ رمضان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین اشروں میں تقسیم کی ہے, اپنے بندے کو خیرات دینے کے لیے تین حصوں میں تقسیم کیا کہ میں اپنے بندوں کو خیرات دوں گا. اس میں سے پہلا اشرہ جو ہے تیس دن ہے نا, تو تین اشروں میں اللہ نے تقسیم کیا اس کو. تو دینے کی ترتیب اللہ پاک نے کیسے کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے پہلے اشرے کو جو رکھا وہ رحمت کا اشرہ بنایا جس سے ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ. یہ کون سا اشرہ ہے؟ رحمت کا اشرہ. مقدم رکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی دو اشروں سے, دوسرے کو مغفرت کا بنایا اور تیسرے اشرے کو جو بنایا جہنم سے آزادی کا اعلان کا کہ تم جہنم سے آزاد ہو گئے. تین اشرے میں تقسیم اللہ کی ہے, حکمت اللہ کی ہے, لیکن سوچ اللہ انسانوں کو دے دیتا ہے. تدبر اور سمجھ عنایت فرمائی ہے جس سے انسان اس کی حکمتوں کو پہنچتا ہے. ایسا لگا کہ دیکھیں پہلے اللہ نے رحمت کو کیوں رکھا ہے, سٹارٹ اللہ رحمت سے کی ہے. حالانکہ تو انعامات دینے تھے, اعلانات کرنے تھے, اگر مہربانی کرنی تھی تو ان کے لیے تو ایک اعلان کافی تھا. بڑے بڑے تہجد گزار, بڑے بڑے عمل کرنے والے, بڑے بڑے حج عمل کرنے والے, بڑے بڑے متقی, بڑے بڑے اولیاء اللہ کائنات میں موجود تھے, بخشے بخشائے اللہ کی طرف سے اشارتیں سننے والے لوگ بھری دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ, ایسے مرد اور ایسے عورتیں. تو ان کی طرف اللہ کی توجہ پہلے جانی چاہیے تھی, سوچتے. سبحان اللہ, تقسیم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی, تقسیم دیکھیں, تقسیم دیکھیں اللہ نے کیا کیا کہ ان کا نہیں سوچا, پہلے اس کا سوچا کہ جو بالکل جہنم کی آگ میں جا رہا ہے آدمی, جو بالکل برباد ہے, زیرو بوٹا زیرو ہے. اللہ نے وہاں سے سٹارٹ کیا کام اپنا, رحمت دینے بخش خیرات دینے کا کام. جیسے ایک بادشاہ تقسیم کرتا ہوں نا کسی کو خیرات دینے کے لیے, اس نے مجمع لگایا بادشاہ نے, تو اس میں طاقتور لوگ بھی ہوں گے, کمزور لوگ بھی ہوں گے, بیچارے مسکین بھی لوگ ہوں گے. طاقتور لوگ تو کہتے ہیں کہ آگے چلے جاتے ہیں نا, हासिल करने के लिए किस चीज़ को, जानदार जो लोग होते हैं। लेकिन मस्कीन जो होते हैं कमजोर पीछे रगड़ रह जाते हैं, आखिर में बारी आती है कि मिल जाए खराब। बादशाह लाने के लिए नहीं, सबसे पहले लाइन में वो लोग हैं जो ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग हैं, वो आ गया है। कितने खुश होंगे लोग, होंगे ना, देखो कितना अच्छा बादशाह ऐसे मस्कीन के खर्च किया। तो अल्लाह सुबहान तआला ने जब खैरात तकसीम करना शुरू, चाहते हैं खैरात देना, तो उसने भी देखें कैसा ऐलान फरमाया, वो तो बादशाहों का बादशाह है। उसने नहीं देखा कि मैं देखूँ मेरे इतने इबादत गुजार लोग हैं, इतने बुलंद लोग हैं, उनकी तवज्जो दी, उन लोगों को देखा जो बिल्कुल फारिग हैं बेचारे, ना कोई अमल, ना लेना, ना देना, ना गुनाह, मायूस में डूबे इंसान। तो गुनाह एक ऐसी अजीब चीज़ है, पुष्पना ही उसकी, पुष्पना मतलब उसको पीछे धक्का देने वाला शैतान होता है ना, गुनाहगार को धक्का देने वाला, यानी उसको तरगीब देने वाला, इंस्पायर करने वाला, उसको कौन होता है पीछे, शैतान, कर ले कर ले कर ले, वो चलाता है उसको, फिक्र की क्या बात है। जब इंसान गुनाह करने लगता है, एक दफ़ा गुनाह किया तो फिर अगले गुनाह की तो उसको हौसला बढ़ाता है उसका, इस तरतीब से गुनाह कराते हैं इंसान से, फिर आगे और उसको हौसला देते हैं, हत्ता कि गुनाह करते करते वो ऐसा हो जाता है कि कहता है यार छोड़ो, अब तो इतने गुनाह कर लिए मैंने, अब क्या मेरी बख्शिश होगी, तो करो खूब जो गुनाह कर ले। यानी जिस्म पे कभी किसी जगह खुजली हो ना, खुजली तो पहले आप उसको थोड़ा हाथ लगाएंगे, खुजली होगी वो फिर और बढ़ेगी। अब हालांकि आपको पता है कि नुकसान देगी खुजली मुझे, अब फिर उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे, फिर और मज़ा आएगा, हत्ता कि फिर ये आता शुरू कर देते शुरू से खुजाना शुरू करता है, और हालांकि उसके खुजाते हुए उसके जिसमें खून भी निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी खुजाएगा, कहता है यार अब कर पूरे करूँ उसको, गुनाह को इस तरगीब देता है शैतान। पहले इंसान की ये हालत नहीं होती, फिर इस हालत पर पहुँचता है, चलो यार करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, बोले आम करो गुनाह। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इन लोगों से काम स्टार्ट किया है रमज़ान का, ऐसे लोगों से स्टार्ट किया है काम, ज़ाहिर उसमें हम भी हैं, हम भी आप ना हो मैं तो मौजूद हूँ उन इंसानों में। तो अल्लाह ताला ने हम जैसे इंसानों का जो है ना बड़ा ख्याल किया है, कि ये तो जो है ना ये तो निकल ही जाएंगे, अपनी नमाजें हैं इनके पास, अमाल हैं, बड़े बड़े मामले किए हैं उन्होंने, हज किए हैं, बहुत कुछ है अभी इनके पास, तो इसको कौन पूछेगा, और ये तो मायूस भी हो चुका है, ये तो मुझे कहते और खुजा लो, चलो निकल रहा है खून तो खुजाने दो। मिसाल समझ आई आपको ना, ये गुनाहगार करने की मिसाल है, गुनाहगार इस पोजिशन पर होता है, चलो यार छोड़ो कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। जैसे नहीं आपने सुना हदीस में किस्सा कि एक आदमी ने एक कत्ल किया, दो किया, फिर तीन कराया शैतान ने, कत्ल की अच्छी चीज़ है, तो आप किसी को मार रहे हैं, किसी को गर्दन उड़ा रहे हैं, किसी छुरी मार रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन अंदाजा लगाएं एक कराने के बाद तरकीब दूसरी, उसमें चस्का दे देता है शैतान, कर ले उसको ब्रेव कर देते हैं। बड़े बड़े आपको इंसान हजारों लोगों को कत्ल किया होता है, फिर रोते हैं आराम से, अपनी तारीफ कराना चाहते हैं, मैं बहुत बहादुर हूँ, इतना कलबो हो जाता है इंसान पे, आप बताएं कि क्या होगा इंसान, क्या बन जाता है। उसे एक कत्ल किया, दो किया, करते करते 99 पे पहुँच गया जवान, 99 पहुँच गए, 99 तो हो गए मेरे पूरे, उसे ख्याल आया कुछ याद कर ही लूँ थोड़ा सा बहुत, अब चल पड़ो आगे बैठता राहिब, वो खुश किस्म का मौलवी था, कोई अल्लाह वाला नहीं था ना, तो उसे कहते मसला बताना कि क्या मसला, कहता जी ये कत्ल हो गया, कहते कि कत्ल हो गया कोई बात नहीं, कहते एक नहीं कहते दो कहते तीन चार नहीं जी कितने हो गए 99, बताओ तू इधर कितने आ गया बदतमीज नाराय कैसे होता है, चलो भाग यहाँ से, तो उसने दो तीन थके मारे, तुझे कौन पक्षेगा, तेरा क्या हाल हो सकता है, खत्म। अच्छा जी ये मामला है, कोई है ही चांस नहीं, कहते नहीं कहते ठीक है फिर 100 ही पूरे करता हूँ, उसको भी फारिग कर दिया उसने। तो ये हालत होता है इंसान के गुनाह करते हुए, बदतरीन जो गुनाह है कत्ल दुनिया के अंदर आज उसको कर देते हैं, बदतरीन गुनाह देखता है कि पता है उसको मैं ड्रग कर रहा हूँ, ये मैं क्या कहता हूँ उसको, ड्रग्स जो होते हैं मैं पी रहा हूँ या पीने के आएंगे उसको स्मोक कर रहा हूँ, जिस तरह भी लेता है हजारों किस्म के तो ड्रग्स हैं, तो अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं वो, लेकिन उस गुनाह पे इतना लज्जत को देता है, कहता है यार चलो करते रहते हैं करते रहते हैं करते करते ये हालत है सूखे लकड़ी बन जाते हैं, ऐसे खड़ा होता है दीवार के साथ सिगरेट पकड़े। किसका नुकसान किया उसने? किसका? अपना। क्यों? कि उसको शैतान ने महरूम कर दिया था अल्लाह की तरफ जाने से, मायूस कर दिया था कि इसका तो इतने बड़े गुनाहगार का कोई वहां हिसाब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि इतने बड़े गुनाहगार के हिसाब कोई नहीं है भाई, तू तो बहुत तो करता रहे, अब कर रहे जो कुछ करता है लगा रहे अपने काम से, थोड़ी आदत को ले लें आप, तो बड़ी बात बताइए। गुनाह तो सारे गुनाह ही होते हैं, को हर गुनाह आपको जन्नत तो कोई गुनाह लेके नहीं जाएगा, ये मैंने ये बस ये छोटा सा गुनाह किया था जन्नत में जाना है, कहते तो उधर जाओ आग में, पहले आग में जाके उस गुनाह को ख़त्म कर। क्या गुनाह था? बस ये ऐसे एक दफ़ा हल्का सा झूठ बोल दिया था, मैं इतना काम था, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, कहते तो छोटा मोटा नहीं है, अल्लाह की नफर में हर गुनाह है, गुनाह ही जो धुलेगा ये दो जख्म धुलेगा, चल भाग दो जख्म फेंक दो उसको। गुनाह गुनाह है, गुनाह को छोटा कौन समझता है? जो ये समझता ही है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं शैतान उसको, इस तरह करते हैं उसको, फिर गुनाह गुनाह एहसास नहीं देता। अब ये गाना बजाना अच्छी चीज़ है मेरे भाई, अच्छी हो जी मज़ा देता होगा, लुत्फ भी आ जाता होगा, दिल भी मसरूर लगता होगा, गानों में जादू तो है ना, शैतान का जादू, जिसमें जादू है ना, ये जादू चला है असल में शैतान से, ये गाना बजाना जो है ना ये शैतान का जादू है ना, इंसान का काम कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, यही होता है ना, काम भी करते जाते हैं म्यूजिक लगा देते हैं, कंप्यूटर बैठे हैं म्यूजिक लगा दे, म्यूजिक के बगैर उनका काम ही नहीं चलता। बात तो ये होते हैं कि अपने बच्चों के साथ तरबियत कैसे करें, छोटे से बच्चे को लंच दे रहे हैं साथ में टेलीफोन के ऊपर म्यूजिक लगा देते हैं, ये है आम हमारी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ आपको, छोटे बच्चों को आप अक्सर देख रहे हैं फीड करते हैं ना साथ में म्यूजिक लगाते हैं टेलीफोन के ऊपर ना, कि चल भी म्यूजिक भी चलता है खाता रहे, अब बच्चा उस म्यूजिक के साथ फूड खा रहा है, वो उसके एक नेचर एक कल्चर बन गया उसका, वो उसको गुनाह समझेगा? मुझे बताए वो क्यों गुनाह समझेगा, जबकि अल्लाह के नबी ने इसके बारे में कितनी बड़ी वही थी और कितनी बड़ी सजाएं हैं इसकी गाने बजाने की, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया हदीस में कि मैं तो इनको तोड़ने आया हूं, मिटाने आया हूं, और तुम कहते हैं नात इसके साथ चलती है, नात वालों को देखें बाजे जिन पे आप फेंकते ना हार, लाई इन मौजें तो लाई रखी मौजें अपने, क्या किस्म के नाते हैं ना, वो जब चलती हैं ना नाते हैं तो क्या चलते हैं, नोट चलते हैं और पीछे तबले चलते हैं, बंदे झुमरते वो कौन झुमाता है, वो नाते झुमाती वो म्यूजिक झुमाता है, इंसान होना चाहता है म्यूजिक उसको ना चाह रहा होता है, उसके अंदर सूर पैदा करता, क्योंकि वो एक आदत है ना, वो जो हमारा जज्बा है ना गुनाह का, उसको जज्ब कर रहा होता है, वो उस कैफियत को जज्ब कर रहा है, गुनाह मस कर रहा है उसको, म्यूजिक उसको घुमा रहा है। और आज तो ये हाल हो गया हमारा कि ये तो गुनाह ही कोई नहीं, अच्छा गुनाह के नाम दूसरा हमने रखा है मजबूरी, सुभानअल्लाह मजबूरी है जी, क्या करें, मजबूरी से ये काम करना पड़ता है जी, एक आम फिक्र है हमारा, क्या करें मजबूरी है जी, मजबूरी है सुभानअल्लाह। जब इंसान के मुंह से ये फिक्र निकल रहे हो तो मुझे बताएं वो जहन्नम के किस हिस्से में पहुंचा होता है, किस अजाबों के हिस्से का इंसान अल्लाह पहुंच जाता है, क्या हालत उस इंसान की होती है कि मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट कर रहा होता है, वो ताउन करता है शैतान के साथ और अपने नफ के साथ, उन टाइटलों को लेकर वो काम कर रहा था जिसको अल्लाह के नबी ने बंग दहोल ऐलान फरमाया कि इसे छोड़ दो गजब आएंगे तुम पर, कम मत तोलो, झूठ मत बोलो, फ्रॉड मत करो, खयानत मत करो, कुछ भी नहीं। احساس کو. نہ جی مجبوری اب کیا کریں, کرنا ہی پڑے گا. ہم تو یہاں آئے ہیں تو اب یہ بھی ہو گیا نا, ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں نہیں کریں گے تو ہم گزارا کیسے ہوگا ہمارا. جھوٹ تو ہے جب کیا کریں, پھر کرنا پڑتا ہے. ہے یہ ایسا نہیں ہماری سوسائٹی کی بات کیوں بھائی بتائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پوزیشن کو بہترین جاننے والا ہے, وہی ہے خبیر اسی. سب جانتے ہیں میں کتنا بڑا ہوں, آپ کتنا بڑا. یہ میں اپنی طرف سے اشارہ کروں, سارے جتنے ایوبوں کی بات کرتا ہوں میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے, ہم دونوں پھنسے ہوئے ہیں, ایوبوں پھنسے ہوئے ہیں. رمضان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا آیا, رمضان کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. یہ تجلی شان ذاتی ہے, ایک پرسنل اللہ کی ایک تجلی اڑی ہے. کون سی شان کو ظاہر کرتی ہے رمضان, کس شان کی تجلی ہے کہ میں کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑتا. یہ وہ تجلی اتری ہے اس رمضان کی شکل میں. اللہ یوم فی شان, اللہ کہتا ہے ہر میری ایک شان سے ایک شان جو ہر اس میں صفات کی شان سے دنیا قائم ہے. یہ جو آپ صوفی جاتے ہیں پڑھتے ہیں ہمارے نقشبندی سے اسباق ہیں نا, اس کے ہمارے آئیں آتے ہیں اس میں الحمد للہ. شیون کو وہ ساری شیون جو ذات ہیں اس کی ڈسکرپشن دی ہے اللہ والوں نے کہ کس شان کی تجلی تفالیہ کیا ہے, شیون ذاتیہ کیا ہے, تجلیت فلاں کیا ہے. یہ سب تجلیات بکھری ہوئی ہیں جس پہ مشائخ کرام بیٹھ کر مراقبات کرتے ہیں, ان تجلیات کو حاصل کرتے ہیں. ہے نا مراقبات ہمارے, یہ تو ہے الحمدللہ. کیا اللہ والوں کی شان ہے, آپ دیکھیں ریسرچ سے دیکھیں آپ. تو میرا دل گواہی یہ دیتا ہے کہ یہ رمضان جو ہے نا میرے ذہن میں آئی, میں نے آپ کو وہ بتایا. یہ تجلیات ذاتی ہے کہ جو تجلی اللہ تعالیٰ کی, کون سی تجلی کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں کسی بندے کو محروم نہیں چھوڑوں گا. وہ اللہ نے کون سی تجلی کس نام سے ظاہر کی ہے دنیا کے اندر, رمضان کے نام سے ظاہر کی. بات سمجھ آ رہی؟ اب کیا ہے وہ دیکھیں, اب رمضان کی طرف دیکھیں. فی روایت رمضان کتنے حصوں میں تقسیم کیا, تین حصوں. یہ بتا رہا تھا میں آپ, تو سب سے پہلے حصے کس کو رکھا, رحمت کا. کیوں؟ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ماشاء اللہ متقین انعام یافتہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی طرف جھکے ہوتے ہیں, ذکر اذکار میں لگے ہوتے ہیں, وہ تو جنت کھلی ہے ان کے لیے. نہیں, اللہ نے جب اپنے خیرات تقسیم کرنی تھی تو خیال کس کا تھا, محرومین کا تھا, ان گناہگاروں کو تھا جو اس میں مایوس ہو چکے ہیں. کہتا ہے کرتا رہا اب بخشی تو ہونی نہیں ہے, اب کیا فائدہ کرو, گناہ کرتے رہتے ہیں. میں بتائیں مقام آ جاتا ہے گناہ کے ساتھ ایک, جس کی ڈسکرپشن میں آپ کو دی ہے. اس کو سوچتا رہتا ہے کہ میں تو ان کو نہیں محروم چھوڑوں گا, چاہے مجھے انہوں نے کتنی گالیاں دی ہوں, چاہے میرے ساتھ کتنے جھگڑے کیے ہوئے, چاہے میری ضد میں آ کے انہوں نے گناہ کیے ہوں. دنیا موجود ہے نا ہر قسم کے لوگ, ضد میں آ کے گناہ کرتے ہیں. اچھا تو یہ کرے گا تو پھر میں بھی یہ کرتا ہوں. اتنا انسان بفر جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. یہ مایوسی کا ایک فنکشن ہے انسان کا, جب مایوس ہو جاتا ہے نا تو گریبان پکڑ لیتا ہے ہر ایک کے, ماں باپ سے لڑنا شروع کرتا ہے, ہر موسم کو پکڑ لیتا ہے. مایوس مایوس جو ہو گیا اس کا قصور نہیں, بیمار ہے وہ بیچارا, مایوس ہو چکا ہے, مایوس ہو سگار ہو جاتا. لیکن اللہ تو پتہ ہے, وہ جانتا ہے کہ جہنم میں کیسے جلے گا اس شخص جس نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ مجھے ماننے والا ہے. اس کا ٹاپ آف دیکھ کہ میرے حبیب کا امتی بھی ہے, وہ تو رحمت العالمین ہے, اس نے تو شفاعت کا شفاعت بھی کرنی ہے. تو میں اس کا کام کرتا ہوں تو اللہ نے میرا رمضان دے دیا. اور پہلا اشارہ جو اللہ نے رکھا وہ کس کا رکھا ہے, رحمت کا رکھا. کیوں؟ رحمت تو ان سے شروع ہوگی نا جو بیچارے بالکل پھڈے ہوئے ہیں, ان کا حال خراب ہے, میرا آدمی جو ہے وہ ہے کچھ نہیں. اللہ نے ان کو سوچا تو اپنی رحمت کے صدقے سے ان پہ لائٹ ڈالی کے قلوب پہ. جب رمضان ہے نا تو سب تو بڑے خوش ہو رہے ہیں, بڑے بڑے متقی خوش ہو رہے ہیں, قرآنوں کو پکڑ رہے ہیں, عمرہ کہیں پروگرام بنا رہے ہیں, ہمارے اعتکاف بیٹھیں گے, کتنے قرآن ختم کریں گے. جو بڑے امیر لوگ ہیں ماشاء اللہ اعمال کے حساب سے, جن کی زندگی تقوی میں گزرتی ہے, متقی لوگ ہیں, ان کے تو پروگرام بن جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی رمضان ایسے گزاریں گے ایسے گزاریں گے. جو ہوتے ہیں گناہ گار لوگ, ہم مارے گئے یار, अब ये कि यार बाहर खा ही नहीं, खा नहीं सकते, ये रमजान आने से पहले की पोजीशन होती है। अब तो पानी भी छुप के पीना पड़ेगा यार, गाड़ी में बैठ के कर लेंगे यार उधर अपना खा लिया करेंगे लंच वगैरह। अल्लाह ने उन पर तजली रहमत फेंकी, सुभान अल्लाह। रमजान लाते सबसे पहले जो तजली पड़ी किस पे पड़ी, इन महरूमिन पे पड़ी जो मायूस थे। जब अल्लाह अब यहाँ हेल्प करते हैं ना अल्लाह ताला, अल्लाह ताला जाते एक सेकंड में सबको मुसलमान कर दे, बड़े से बड़ा सब कलमा पढ़ने लगे, मजालिक अल्लाह भी अजीज, उसके आगे कौन सी कोई मुश्किल उसके आगे। लेकिन खेल जमाया उसने, एक दुनिया बनाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया अपनी हिकमतों के साथ, उसने एक चीज़ बनाई कि इस तरह करके इनको जन्नत दूंगा इसको मैं। मतलब ये नहीं कि वो मजबूर है, वो उनके गुनाह ख़त्म नहीं कर सकता, भूतों को गिरा नहीं सकता, जो हरकतें कर रहे हैं, जो अल्लाह को ना मानने वाले इतने जुल्म हो रहे हैं तो उनको कुछ कर नहीं सकता, यह वजह नहीं है। दारुल अमल है, यहाँ तो काम चल रहे हैं, छुट्टी दी, छुट्टी बिल्कुल अल्लाह ने छुट्टी इसको बनाई जो दुनिया से थी, छुट्टी दी, जब जो चाहे कर वो आदमी चौड़ा हो जाता है। यहाँ तो चौड़ा हो जाता है ही नहीं खुदा, होता तो मुझे पकड़ लेता। ये कहते हैं काफी जब पकड़ते हैं किसी को मारते हैं, वो किधर तेरा खुदा, ये अपनी पर्सनल बात में बता रहा हूँ मैं आपको, कौन बचाएगा तुझे। अब करते थे ना लोगों मुसलमान, चला सुनत अब तू यहाँ, सुभान अल्लाह, समझ आ रही बात आप जी। हाँ क्योंकि तो यकीन नहीं, वो तो मायूस होके काफिर हुए ना, है ही नहीं खुदा, है ही नहीं। जब इंसान मायूस हो जाता है ना, वो कहता है ही कोई नहीं, गुनहगार ये तो कहता है, होता तो मैं पकड़ता, मैं कर रहा हूँ मुझे तो कोई नहीं पकड़ा, इनको तो कोई नहीं पकड़ रहा, ये तो वो क्या कर रहे हैं, क्या जुल्म हो रहा है, इनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा, फिर उसको दलील करता है। टॉपिक सेंसिटिव है इसलिए मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पता नहीं रमजान आया क्यों है। तो इस चीज से तो कोई दुनिया से निकाल नहीं सकता ऐसे इंसान को, कोई बड़े से बड़ा ही वाइज आ जाए ना, इस कैफियत से नहीं निकाल सकता इंसान को। बहुत अजीब कैफियत है, हम समझते अल्लाह ना करे किसी को मुबतला करे, बहुत अजीब कैफियत है। यानी वो हर चीज के सामने खड़ा होता है, आज कर लो मेरा को खुदा क्या करेगा, तेरा क्या खुदा करेगा, इससे देखता है। तो दूसरे इसको छोड़ देता है, काफर जो अजी कर रहे हैं उनको कर रहे हैं हिसाब। लेकिन मानने वालों को अल्लाह ताला मदद करते हैं, जिसमें कलमा पड़ा होता है ना उसकी मदद के लिए फिर रमजान उतारा अल्लाह ताला उस पर। फिर क्या करते हैं उनको भूल जाते हैं, जो तैयारी कर रहे होते ना इतने कुरान पढ़ेंगे उनको तो खुडे लगा देते हैं, तुम तो करते आए हो, करते रहो, तुम्हारा तो काम यही है, तो समझ गया मुझे वो कमाओ ठीक है। लेकिन इस अशरे में तजली जो पड़ती है ना अल्लाह ताला की, इन गुनाहगारों पर पड़ती है, इन इंसानों पर, इस हालत के अंदर, इस कैफियात के अंदर उन इंसानों को अल्लाह तआला जिंदा करके रोजा रखवा देता है। ये है कमाल, ये कोई कर ही नहीं सकता, ये सब कर सकता तो कौन, अल्लाह की रहमत ही कर सकता। ऐसे इंसान को जब आप सुबह उठते देखते हैं, जिसको दुनिया का तसव्वुर सुबह उठेगा और वो उठ के रोजा रख रहा होता है, अल्लाह को गाली देने वाला, अल्लाह को बुरा कहने वाला, अल्लाह के सामने अकड़ने वाला, ये क्या चीज है। ये पहले अशरे की वो तजल्ली रहमत जो अल्लाह ताला उतारी इंसान, उसको थोड़ी देगा, उनको इनाम के देने की थोड़ी तजल्ली रहमत डाली लगे, पंडे का आदमी उनको ये हो फला, उस पर अल्लाह ताला तुम अपने काम पे लगे रहो, तुम्हें तो पता ही है, चलो मैं तो इनका फिक्रमंद हूं। तो किस्ता उठाता है उसको, अल्लाह की रहमत की अजीब शान है, अजीब शान है, उसके हाथ में हर चीज है, उसके कल्ब के अंदर वो तजली उतार देता, तो उसके अंदर वो कैफियत पा देती, चलो यार मैं भी रख लेता हूँ, कि जाना तो जहन्नम है, चलो लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से कैसी करवटें बदल के ना अल्लाह ताला उससे रोजा रखवा देते। और बाहर जो होते ना हमारे मुत्तकी लोग, बड़े बड़े परहेजगार, वो है इन्हें भी रोजा, इसने भी रोजा, ऐसे करते
وہ شرابی کل تو شراب پی رہا تھا یار، یہ کچھ چکر لگ رہا ہے یار، ہوتا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں بات، وہ چکری دے رہے یار کسی کو، اس نے کیا روزہ رکھنا ہے، یہ تو فلاں بیچ رہا تھا، افیم تو بیچ رہا تھا، اتنے سارے لوگوں سے نے خراب کیے، یہ اسے کچھ چکر مار رہا ہے، چکر نہیں مار رہا بلکہ کیا اللہ کی رحمت کے پکڑ میں آ گیا یہ شخص. یہاں وہ گناہ گار ہوتا ہے شخص جو ایسی باتیں کرتا ہے کسی کو دیکھ کر. اب یہ نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، کبھی انسان کے گناہوں پر نہ ہنسنا، کسی کو برا نہ کہنا، کل ہو سکتا ہے اس سے بدتر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کافر کو بھی ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کل وہ ایمان لا کے مسلمان ہو کے اچھے درجے پہ چلا جائے اور کل تو کافر ہو کے جہنم کے اندر چلا جائے، کیونکہ ابھی کھیل باقی ہے، مرا نہیں تو، اسٹل دا گیم از گوئنگ آن، ابھی گیم جاری ہے بیوقوف، کس کانفرنس سے تو کہتا ہے کہ تم 15 قرآن ختم کی، تم نے تہجدیں پڑھ لی ہیں، تم نے عمرے کر لی ہیں، تم نے بہت بڑی عبادتیں کر لی ہیں، اس پرتے پہ آ کر اس ٹیلنٹ کا تجھے نہیں پتا کہ تیرا اینڈ ہوگا کہاں جا کر. ہمیشہ انسان کو خطرہ اس کا نکلنا چاہیے کہ میں سجدہ کروں، نماز پڑھاؤں، نہیں، کل کے وقت کے بارے میں روئے. جب اللہ والوں کو آپ روتے دیکھتے ہیں نا، ان کے پاؤں پہ ورم دیکھتے ہیں نا، ان کی کیفیات کو دیکھتے ہیں نا، تو آدمی سوچتے ہیں یار اتنا تک ہی پریز کا اس کو کیا، کیوں کہ وہ اس عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا مرتے دن تک یہ عبادت مجھے نصیب ہوگی بھی یا ہوگی نہیں ہوگی، کیا اسی طرح میں اللہ کا نام لے بھی سکوں گا نہ لے سکوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس قرآن کی آج میں تلاوتیں کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، مرتے وقت اس سے مجھے نفرت ہو جائے. اور ہوتے دیکھا ہے دنیا کے اندر لوگ جاتے ہیں ایسے میرے بھائی، اور کیونکہ پرہیزگار جو ہوتے ہیں، متقی جو ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں، ان کو خوف بیٹھ چکا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کی شان کو، تو اس کے اندر یہی معرفت کا یہی تو کمال ہے جو محنت کی جاتی ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے. بات سنیں، ہم نقطہ دے رہا ہوں، صوفیہ جو معرفت حاصل کرنے کی رات دن محنتیں کرتے ہیں، وہ اس معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی، سبحان اللہ، اس معرفت کو اپنے اتارنا چاہتے ہیں کہ ان میں احساس ہو جائے، پیدا ہو جائے یہ چیز کہ جو آج ہے کل کا پتہ نہیں تیرا، کیونکہ وہ رب ہے، خائف رہے اس سے، ڈرتا رہے اس کی حقیقت کو جائے، تو جہنم کے ان تمام زندگی کی عبادات کو بلا کر تجھے کافر اٹھا کر تو جہنم کو پھینک دے. اور اس کو اس کو یقین ہوتا ہے، سجدے کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو کہ میں میرے جیسے ہے کوئی نہیں، وہی انسان جو ہے اٹھ کے دوسرے پہ ہم مذاق کرتا ہے، طنز مارتا ہے، او یہ بھی نمازی ہو گیا، یہ بھی آ گیا اللہ کے ذکر، اچھا چلو جی ٹھیک، اچھا کبھی آ بھی جائے نا پیچھے پانچ پانچ دفعہ مڑ کے دیکھتے ہیں اس کو. یہ عمل تو اللہ کو اتنا ناگوار ہے نا، یہ تو اتنا ناگوار ہے نا اللہ تعالیٰ کا عمل، کہ اس کا تو معمولی سمجھو ختم. سمجھا نہیں میری باتیں، یہ صوفیانہ باتیں کر رہا ہوں آپ کو. اس میرے بھائیو، اتنے خطرناک اس اڈے میں پھنسے ہوئے ہیں نا ہم، کہ نہ ہمیں کل کا پتہ ہے نہ آج کا پتہ ہے. بس ایک ہی چیز یاد رکھو، ایک چیز کا دھیان رکھو کہ اللہ کا خوف زبردست ہو اور اللہ کی رحمت کا انتظار ہو، کہ وہ بچا سکتا ہے. میری یہ حالت، میرے یہ خیالات، میرا یہ سوچنا، میرے یہ کرتوت، میرے یہ کرتوت، میرے یہ کام، اللہ میں کیسے بچوں گا؟ اس کے لیے اللہ نے پہلا شرط رکھا رحمت کا، کہتا ہے میں تجھے بچانے ہی آیا ہوں. پھر جب اس کو کر بدلتا ہے، وہ بیچارہ اتنا خطرناک قسم کا آدمی یا عورت، دانیاں زانا زن کرنے والے، بدماشی کرنے والے، ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس کے بندے ہیں، ایمان والے، تو اس کے دل کو ایک تجلی مارتے ہیں. پھر ان کی جب تجلی پڑتی ہے روزانہ میں، تو چلو چلو یار، پہلا نہیں ان کا ہوتا ہے، چلو یار جمعہ دار روزہ رکھ لیں گے. ماشاء کس کا کون سا تاریخ بھی تو سنی ہوتی ہے، جمعہ بڑی چیز ہے، جمعے کا رکھیں جی ہم، تو سٹارٹ جمعے سے کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب سٹارٹ کرتا ہے نا، اس کی رحمت ہمیشہ شروع ہوتی ہے، نچلے درجے سے شروع ہوتی ہے. جتنے اعمال اللہ پاک نے دیے نا، عادت वो क्या है, वो निचले दर्जे ऐसे हैं माने कि हर छोटे से छोटे इंसान भी वो कर सकता है, कुरान को कुछ समझ सकता है, तलावत कर सकता है। अल्लाह क्या कहता है कि इतना आसान कर दिया हमने तुम्हारे तलावत को, इतना आसान कर दिया कि बहुत ही आसान कर दिया तुम्हारे लिए कुरान, जिसको पूरी कायनात नहीं समझ सकती। कुरान तो एक ऐसी चीज है, दो चीजें जिसके इंसान की अकल नहीं समझ सकती। अल्लाह तो है ना, बुरा है उससे ना, मखलूक में बात कर रहा हूं, तखलीक में। दो चीजें तखलीक में ऐसी हैं जिसके इंसान के जहन नहीं समझते, कौन? एक कुरान जिस पे उतरा। दो शख्सियात हैं, हकीकत अहमदी, हकीकत मोहम्मदी को कोई नहीं जान सकता। जो इस पे अड़ते हैं ना, वो बड़े बेवकूफ किस्म के इंसान है। जो अपने फलसफे पेश करते हैं ना, वो बड़े बेवकूफ इंसान है। बादस खुदा बुजुर्ग, यही किस्सा मुख्तसर, उसकी शान को हम बयान नहीं कर सकते। मखलूक में बात कर रहा हूं, अल्लाह के जितने भी आए हो क्या है, खल्क हैं, खुदा नहीं है, खुदा एक है। तो मखलूक में अल्लाह ताला चुने है कुरान, और जिस पे कुरान नाज़िल किया इसकी हकीकत को कोई पहचान नहीं सकता। और जिन शैतान ने अटका दिया, कोई कहता इल्म गैब है, कोई कहता नहीं, कोई कहता हाजिर है, कोई गैर हाजिर है, इसी में फिरके बन गए, मजहब बन गए, कुरान बढ़ गए, मस्जिदें बढ़ गई, हमारे पोतनी खत्म ही हो गए हमारे कुरान को। हालांकि ये कोई मसला है, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में आप अल्लाह ने कह दी इसकी कुछ नहीं पहना, आप झगड़ रहे हैं, गलत करूँ सही करूँ? कोई कह रहा हाजिर है, कोई गैर हाजिर है, कोई कह आलिम है, कोई कहते नहीं आलिम है, कहते गिन गैर उठते, कोई कि इतना मजाक किसी हस्ती के बारे में अमल नहीं करते, उनकी बात में अमल नहीं है, वो नहीं है हमारा। हम अपना टिप मानना चाहते हैं, इतना बड़ा मैं आलूम, मैं जानता हूँ इसी हकीकत, वो ये थे उनके इलम इतना था, वो कहते था ही नहीं, कहता इतना था, वो कहता था कोई इलम खुदा नहीं, वो तो खुदा यही कहते थे खुदा है, ये किया था नहीं सही उन्होंने, ये क्या है, ये सब फजूलियात है सारी। क्यों हमने बस दीन पे तो आने नहीं, अल्लाह को तो मानने ही नहीं सही, जिस मकसद की जो चीज होती है उसको तो हम तस्लीम नहीं करना। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह कहूं ताकि आप सोते सोते जाग जाए मेरी बातें, मुझे पता चले आप सुन रहे हैं मेरी बात, सुन भी नहीं सुन रहे हैं, मैं समझा सुन ही रहे, नाराज हो गए मुझसे, पता नहीं क्या बातें करते हैं सूफी, घबरा तो नहीं गए। तो अल्लाह सुभान ताला ने अशरे ऐसे सेट किए कि जो सबसे बेचारे दबे लोग हैं ना, उनका काम बनाना था, उनको महरूम नहीं करना था अल्लाह ताला। तो अल्लाह सुभान ताला ने रहमत को पहले लाया, उनको तैयार किया, पहले जुम्मे पर लेकर आए, जुम्मे के बाद जुमेरात पे लेकर आए, फिर उसको सोमवार पे लेकर आए, हत्ता कि 10 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनको आदत पड़ गई अल्लाह से मोहब्बत करने की। कैसे खींचा अल्लाह ताला ने, मदद की है ना उनकी, यहाँ तो अल्लाह ताला खींचे उस औरत को, उस मर्द को, उसमें चस्का सांस शुरू हो गया, फिर उनको मस्जिद में नजर आना शुरू हो गई, फिर उसके साथ मिले जो कहते हैं आठ पढ़ने, कहते ये सही नहीं, ये आठ सही है, उनके साथ मिला दिया। हर बात में अल्लाह की हिकमत है, किसी की जरूरत नहीं जो 20 की जगह 8 पढ़े, नहीं क्यों रखी 8, हम तो झगड़ते हैं, मैं कहता बहुत अच्छा किया, क्यों कि वो जो पिछले तबके के लोग हैं जिसके बारे में मैं बताता हूँ, जो 2 भी नहीं पढ़ते थे, चलो 8 तक तो पहुंच गए, नहीं समझ बात में अल्लाह की शान को देखा करे, कि अमीरों के लिए नहीं उतरा, गरीबों के लिए उतरा है ये। आठ पढ़ के जा रहा है, गुस्सा करते हो तो शर्म नहीं होती, तो आठ पढ़ के जा रहा है, आठ की बात करते हैं, मैं 2 भी नहीं पढ़ता था, मैं तो मुझे सीधे नहीं आता था, इसको नहीं करते, मैं 8 पढ़ रहा हूँ, 8 तक आ गया हूँ मैं, और तेरे बस में होता तो मुझे तू 8 तक भी ना जाने देता, ये तो उसकी रहमत है जो वो खींच लाई है सुबह। आप समझे पहला शर्त रहमत क्यों है, समझाए रहमत क्यों है, ये उन लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के, हम उस पर झगड़ते हैं, 8 क्यों किए, 20 क्यों किए, तराबी के साथ क्यों मिला दी, चुप चुप करो कि अल्लाह की हिकमत उतर रही है, किसी को सही कर रहे अल्लाह पाक, तू बीस, तू चुप करके बीस पढ़ता रहेगा, आठ पढ़ने वाले को जाने दे, रास्ता नहीं होगा मौलाना साहब, नहीं मसले ना निकाला करें अर्जी का, अल्लाह की हिकमत को भी दिखा करें थोड़ा। कि जो गरीब आ रहा है बेचारा कुछ नहीं पढ़ता, उसको तैयार करते, जब जो रब ना पढ़ने वाले को आठ पढ़ा रहा है, वही रब उसको बीस भी पढ़ा देगा। सबर तो कर, पढ़ाता है किसको पढ़ाया, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं कौन सा कोई आसमान से उतरा हूँ, कोई मैं आपके आसमान से उतरे थे, पैदाइशी वली थे या कोई आपके कुरान लेके उतरे थे, आप हम सब डब्बे हैं, नमाज से भागने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, दाढ़ी ना रखने वाले, फजूल हरकतें करने वाले, कोई है कोई जो आसमान से उतरा हो सब सब चीज़ें लेके गुनाह करने वाले, बातें समझ आ रही है ना, मैं आपको अपने हम अपनी हैसियत भी देखते रहे ना जरा, हम कौन है, तो जब हम सही हो सकते हैं करने वाले ज़ात कौन है, यही रहमत तजल्ली है जो ज़ात हमें सही की है। किसी भी वायस से हम तब्दील नहीं हुए, हम गुनाहगार लोग याद रखें, किसी तफसीर से हम सही नहीं हुए, हम से अगर तब्दील हुए तो उसकी रहमत के चस्के से तब्दील हुए। जिस जमीन पत्थर जमीन हो ना, कितनी तेज बारिश डाल दें आपस पे, वो बह जाएगी, जमीन के अंदर नहीं जाएगा पानी, संग राख है। जो दिल पक्के हो जाते हैं ना गुनाहों के साथ, जल के राख हो जाते हैं, उस पर कितने कुरान पढ़ लें आप, कितनी तवाज्जात कर लें, वो बह जाएंगे, वो जल अबूजल रहता है। निगाह रहमत नबी नहीं पड़ी उस पर, असर नहीं कर सकती, कितनी संगलाक जमीन होगी वो मुझे बताया। यहाँ भी अलग एक हिकमत साबिर करना था, तो चाहता तो निगाह रहमत पढ़ के उसके दिल को पाश पाश कर देती, लेकिन क्योंकि ये एक हिस्ट्री बनानी थी अल्लाह ताला ने, कि ऐसे कलू पैदा होंगे कि जहाँ मुआवज़ और कुरान असर नहीं करेगा, क्यों बताना ये था कि उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, और कहमत क्या आएगी, मेरी रहमत की तजली काम आएगी, और उसका जहूर करूंगा साल में एक दफा, और वो रमजान की शक्ल में होगा। अब समझ आ रही है आपके रहमत, पहला अशरा कभी सुनी थी ये बात? नहीं सुनी, सुनी तो मैंने भी नहीं थी, सही बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता था क्या शान है। ये हम जिस मैंने नमाजें कैसे पढ़ते, तरावी कैसे पढ़ते, मैंने मैं तो बकता था नमाज से, कहाँ पढ़ते थे, फिर क्या किया, पहले घर में पढ़ाई, हम किसी को घर में पढ़ते देखते हैं, ओए तू शर्म नहीं आती, चुप, ये आज घर में पढ़ाने वाली उसकी ज़ात है, इसको निकालेगा, अड्डे पे चढ़ा दिया है इसको अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र ना कर, इसको चढ़ाएगा अभी, ये सबक दे रहे हैं रमज़ान की, बकवास ना किया करो, मेरी रहमत की तरफ देखा करो, जब कहीं फंस जाओ तो अपने ना मारा करो झटके, कोशिश अपनी ना शुरू कर दिया करो, दीन के किसी चक्कर में फंस गए हो, मजबूरी नाम ना लिया करो, नहीं मजबूरी के साथ गुनाह पे कायम ना हो जाना, बल्कि क्या करना, मेरी रहमत को पुकारना। ये प्रैक्टिस कराया रमजान कि जैसे आज मेरी रहमत ने तुम्हें निकाला है, तो कल जब तुम मुझे फंसो किसी दीन के मशरे में, क्योंकि अभी बड़े बड़े फितने आने वाले हैं, फितने दज्जाल आएगा, बड़े बड़े फितने आने वाले हैं, और जहन्नुम से बचने के लिए एक ही चीज़ काम आई तरफ होना, ये प्रैक्टिस करा रहे रमज़ान में, कि जब किसी दीन के ऐसे मसले में फंस जाओ जहाँ कोई सूरत ना हो निकलने की, कहने तो फंस गए जी, आप सूरत से कैसे निकले, आप हजारों लोग साथ, मैं तो फंसा हूँ जी, मेरी तो दुकानें चलती हैं मेरे वहाँ, मैं आप कैसे निकलूँ, है ये लोगों के लफ्ज़ बता रहा हूँ आपको, मौलाना रूम की बात मुझे याद आती है, कहते जब ऐसे मौके पर फंस जाए तो कम अज़ कम तू क्या कर, दौड़े यूसुफ कर, मसलन वाक़ा पेश, क्या खूब मौलाना रूमी की क्या बात है, कह रहे दौड़े 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 यूसुफ कर, जब यूसुफ को फंसा दिया, ये अल्लाह ने जो अपने नबियों के वाक़ात बताते हैं हिकमत में बताते हैं सारी, नबी सैंपल्स से हमारे लिए, आदम को क्यों निकाला, सजा था करम, वो हिकमत थी, हम उस पर डिस्कस कर ही नहीं सकते कि सजा थी खता थी क्या थी, नहीं वो एक वाकया था जो उसने हमें दिखाना था, हमारी तरबियत इस तरह होनी थी कि जब गुनाह हो जाए तो ये करना है ऐसे करना है, मायूस ना होना, तुम्हें फिर मैं सत्य से अपने बख्श दूंगा। आदम को पैदा कर दिया, यूनुस को पैदा कर दिया, पिछली पेट में जब ऐसा हो ऐसा हो तो ऐसा होगा, अब यूनुस सलाम जो है वो नहीं कहा, उसको तो वो तो एक प्रैक्टिस दिखा रहे हैं हमें, अल्लाह का नबी नबी होता है, उसको सही अमल लेना है, मसला उसने बताएगा तो हमें पता कैसे चलता। नहीं समझ मेरी बात? तो ये रहमत जो अल्लाह ताला ने डाली, कहते मौलाना यूसुफ कहते हैं कि दौड़े यूसुफ को देख, तुम को कहते फंस गया मैं सूर से निकल नहीं सकता, मैं हज हराम से नहीं निकल सकता, फला चीज से निकल सकता, दौड़े यूसुफ को देख। जब यूसुफ को हमने फंसा दिया, बंद कर दिया, जवानी दे दी, हसीन औरत दे दी, जज्बा दे दिया, नफ्स दे दिया, यूसुफ में नफ्स था सलाम, ढंग तो नहीं निकाला था अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने पुकारा ना कि जी यूसुफ तो मारा दे दे, गुनाहों की दावत देता है, देखिए क्या मिसाल बनाया हमारे लिए नबी, नबी को तो बचाने में वो तो नबी नबी होते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मिसाल बनाया कि तुम भी ये काम कर लोगे, नबी जो काम कर रहा है ये तुम्हें करके मैं किससे इसलिए सुना रहा हूं, ये बता रहा हूं कहता है कि तुमने भी ये काम करना है, ये ना कहना मजबूर है, ये मजबूरी तुम्हें जहन्नुम से नहीं बचाएगी, ये काम करना तुमने यूसुफ की तरह दौड़ना है। बोले सुभान अल्लाह, हराम मजबूरी होगी जी क्या करें, वहां जाते हैं तो ये होता है, क्या क्या बताऊं आपको, दीन के काम भी हो रहे हैं, गुनाह भी हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं दीन की, गुनाह भी हो रहे हैं, दावतें भी हो रही हैं और गुनाह भी साथ हो रहे हैं, हराम भी हो रहे हैं, और साथ में ये मजबूरी है, अल्लाह ये किस नहीं मजबूरी नहीं है, मैंने तुझे अंदर एक सलाहियत रखी है तेरे अंदर, जब तू रहमत को पुकारता है तो रहमत उस सलाहियत को उजागर करती है, उजागर करके जो रब ऐसे गुनाहगार इंसान को रोदा रखा सकता है तो तुझे हर जगह से बचा सकता है। तू बकवास करता है, जहन्नुम को खुद पुकार रहा है, दौड़े यूसुफ मार दरवाजे, अब उन्होंने क्या किया, सब कुछ चला बागल इंसान होता है, पता है दरवाजे बंद हैं, सामने बाग कहाँ रहे, जुलेखा तो हंस रही थी कि ये देख चाबियां तो मेरे पास हैं, जाएगा कहाँ, कौन सा दरवाजा तू खोलेगा, अब तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, क्यों नहीं मानता मेरी बात, जुलेखा ने कहा हाँ दावत गुना है, कहाँ जा रहा है तू भाग के, बहुत बेवकूफ हो गया, किधर जा रहा है, कौन सा दरवाजा खोलेगा तेरे लिए, लेकिन वो यूसुफ थे, वो यूसुफ थे, अल्लाह के नबी थे, समझे सुबह सुने एक नुक्ता है बता दूं, जिस वक्त इंसान किसी गुनाह में फंसा होता है और वो यूसुफ वाली दौड़ मारता है तो सलाहियत यूसुफ पैदा कर देता है इंसान के अंदर, कैसे प्यारा नुक्ता है, वही अंदर उसके नूर आ जाता है, जिस तरह यूसुफ के साथ काम किया ना वो नूर उसमें तजल्लियात कर जाता है उस गुनाहगार के अंदर और उसको बचा देते हैं। यूसुफ मारी शूट, क्यों शूट मारी, वो बताना चाहते थे, वो तो नबी थे, वो एक सबक दे रहे थे, कहते मायूस ना होना इस हालत में, तुम्हें एक काम करना होगा, क्या कि अपने रब की तरफ पुकारो, रब की तरफ दौड़ो, उसकी रहमत का वाज़ मानना, उस वक्त हराम पे ना पड़ जाना, फौरन छोड़ के ना, मैं तेरी रहमत का सहारा है, बचने में आ सकता है इससे, तू बचा, जिसमें गिर गया हूँ, गलती में गिर गया हूँ, इतने सूद में गिर गया हूँ, इतने हराम में गिर गया हूँ, अब इस छोड़ता हूँ तो ये ख़त्म होगा, इसको छोड़ता हूँ ये ख़त्म होगा, एक तांता है हज़ार बड़े बड़े गहराई में फंस चुका हूँ, अब क्या करूँ, यूसुफ दौड़ो मार अल्हम्दुलिल्लाह, पुकार अल्लाह की रहमत को, अच्छा पुकार के मामले क्या है, अब वो नबी थे, उन्होंने ड्रामे से नहीं पुकारा होगा, जिस वक्त अल्लाह को दिल की गहराइयों से पुकारा जाता है कि तू जानता है देख रहा है मैं तुझे बुला रहा हूँ सुनता क्यों, हाय हाय ये एक पुकार अलग है, नहीं समझ बात, वास्तव इंसान होता है ना माँ से इतना, माँ वो भी शान रबियत उस अंदर डाली है, माँ के अंदर तजल्ली रबियत उस माँ के अंदर है, रब्बाना सगीरा फरमाया अल्लाह ने, रब क्या है माँ बाप, तो क्या होता है आदमी बुढ़ा भी हाय माँ दर्द होता है ना उसके मुँह से ही निकलता है, ओ मेरी माँ, निकलता ही निकलता कभी, क्यों, इसीलिए वो शान रफूत में डाली गई है ना, तो उसको पुकारता, तो जब इंसान असल की तरफ जाता है तो माँ तो गायब, आय अल्लाह, जब ये पुकार निकलती कहता हाँ बंदे, उस वक्त वो रिश्ता खत्म हो जाता है कि तूने इतने गुनाह किए मैं तेरे से नाराज हूं, नहीं उस पुकार में वो ऐसी पुकार होती है कि दिल की गहराई से अपने माँ को जो बुलाते हैं पलट गया थे किधर, उसी से वो ये कितना पुकारते अल्लाह ताला को ऐसा गया कि अल्लाह बस रखा किधर है तू आ गया मैं ये सबक दिया किसने यूसुफ सलाम ने भागे सुबह कहाँ से रही है भागे वो भागे कहा मैं तो यूसुफ तेरे साथ ही हूं तेरा भागना मैं छोड़ता हूं जिस दरवाजे पर जाते दरवाजा खुलना शुरू हो गया क्यों कमाल यूसुफ का नहीं था कमाल उसकी रहमत का था हम ये कहें जी वो नबी थे वो तो वली है उनकी तो ये करिश्मा है उनका तो करामत है ना 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 करामत कुरमत कुछ नहीं कमाल उसकी रहमत का था ये तूने उसकी रहमत को पुकारा है जिस क्या है पहले अश्रे में बड़ी प्यारी बातें पता नहीं कहां से आ रही है दिल नहीं करा खत्म करने को नहीं फिर आप रोजा क्या करेंगे फिर रोजा भी जाने वाला है लग तो किसी को नहीं रहा होगा इस वक्त देखिए कुरान कितने मजेदार चीज है अल्लाह वाले की जिक्र कैसे है ये रोजा शोजा क्या पता है भूल गए हम तो रोजा है भी नहीं है मैं तो भूला बैठा हूँ तो बिजली वो देखे तो मैं कहा सीन ड्रॉप कर दूँ बात तो बहुत खूबसूरत है इंशाल्लाह में ध्यान में रही बात इसको हम बस आगे चलेंगे कि भाई तीन अशरों का मतलब क्या है और अल्लाह कैसे बचाते हैं इंसानों को लेकिन इतना मैसेज तो मिली है ना इंसान को आज कि भाई गुनाहों में जब घिर जाओ तो घबराना नहीं पहले अशरे से ये सब सीख लो कि अल्लाह को पुकारना उस गुनाह के साथ ताऊ ना करना ये सिखाया अल्लाह तआला ने वाकबिल्लाह चलें दुरूशी पढ़ते हैं بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم رب العالمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ثبتنا على الإيمان وعمل الإيمان وعشنا يا مقلب قلوبي يا مقلب قلوبي صرف قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت يا كريم يا رحيم يا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں بخشش فرما دے یا اللہ تم پہ کرم فرما پوری امت پہ کرم فرما یا اللہ پورے عالم پہ رحم فرما میں نے یا اللہ تو اپنا فضل کرم فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین